नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक एनिमेशन और गेमिंग उद्योगों में भारत की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। उन्होंने रचनात्मक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने में युवाओं की भूमिका की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का उद्घाटन किया। जापान में संसद के निचले सदन के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। भारत की आकांक्षा सालुंखे ने फ्रांस में कुजिक्स अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वैश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता और अहमदाबाद में दूसरे एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही है।
तमाम जांच एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर नागरिक की जागरूकता।
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत को भी सुनाया। बातचीत में जालसाज अपने को पुलिस, सीबीआई अथवा नार्कोटिक्स विभाग का अधिकारी बता रहा था। ऐसे जालसाज पीड़ित से व्यक्तिगत सूचनाएं लेकर भय का माहौल पैदा कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और आयु समूह के व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं और उन्हें भय के चलते लाखों रूपये गंवाने पड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हो। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए तीन उपायों की चर्चा की।
मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के तीन चरण बताता हूँ। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूँ, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें।
कल विश्व एनिमेशन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लें। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू के प्रशंसक दुनिया भर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर भी गेमिंग में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एनिमेशन एक ऐसा उद्योग बन गया है जो अन्य उद्योगों को भी ताकत दे रहा है और वीआर टूरिज्म इसका एक लोकप्रिय उदाहरण है।
वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है।
कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मेड इन इंडिया है।
प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष दो महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती इस महीने की 31 तारीख को है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को मनाई जाएगी।
इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। सरकार ने महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लोह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा150 के साथ दुनिया के सामने लाए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कैलीग्राफी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आजकल जम्मू कश्मीर में स्थानीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलीग्राफी का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने अनंतनाग के फिरदौसा बशीर का जिक्र किया, जिन्हें कैलीग्राफी में महारत हासिल है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलू राम माथरा का भी उल्लेख किया, जो अबूझ माडिया जनजाति की लोक कला का संरक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रूस के याकुत्स्क में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के मंचन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही की लाओस यात्रा के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा लाओस की रामायण का मंचन देखना रोमांचकारी रहा।
मैं लाओस गया था, वो नवरात्रि का समय था। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। उनकी आंखों में वही भक्ति, उनके स्वर में वही समर्पण जो रामायण के प्रति हमारे मन में है।
श्री मोदी ने पेरू की एरलिंदा गार्सिया का उदाहरण दिया। वे युवाओं को भरतनाट्यम सिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को #culturalbridge के माध्यम से ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। श्री मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 अक्टूबर की बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की भी शुभकामनाएं दी। तेलंगाना के चेरियाल चित्र शैली के चित्रकार डी वैकुंठन ने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके प्रयासों का उल्लेख करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी संवाददाता से बात करते हुए श्री वैकुंठम ने कहा कि इससे चेरियाल चित्र शैली की दुनिया भर में पहचान बनेगी और उसे मान्यता मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल में आज भूमि बंदरगाह पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि इस बंदरगाह के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं। उन्होंने कहा कि भूमि पत्तन प्राधिकरण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
लैंड पोर्ट अथॉरिटी समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को स्मगलिंग को रोकने का काम करा है और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है।
पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में है और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है। मैत्री द्वार दोनों देशों की सहमति से बनाया गया है। जापान में निचले सदन के लिए मतदान चल रहा है। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में शिगेरो इशिबा के चुने जाने के 3 दिन बाद ही इस चुनाव की घोषणा की गई। शिगेरो इशिबा ने आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है। पूर्ववर्ती फुमियो किशिदा के अगस्त में पद छोड़ने का निर्णय लेने के बाद श्री इशिबा ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। एलडीपी ने निचले सदन में 465 सीटों में से 247 सीटें जीती थी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी कोमितो की 32 सीटें थी। सदन में बहुमत के लिए किसी पार्टी को 233 सीटों की आवश्यकता होती है। कानून व्यवस्था के मामले में 142 देशों की स्थिति को लेकर तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है। इस प्रकार कानून व्यवस्था के दृष्टि से पाकिस्तान को दुनिया के 3 सबसे खस्ताहाल देशों में माना गया है। सूचकांक में केवल माली और नाइजीरिया की स्थिति पाकिस्तान से कमजोर बताई गई है। सूचकांक में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी सबसे ऊपर हैं। भारत को 98वां स्थान मिला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की आकांक्षा सालुंखे ने फ्रांस में कुजिक्स 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वाश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। आकांक्षा ने कल फाइनल में मलेशिया की यशमिता जदीश कुमार को सीधे सेटों में हरा दिया। भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अहमदाबाद में जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 75 रन बना लिए हैं। अहमदाबाद में खेली जा रही 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत न्यूजीलैंड को 59 रन से हराकर 1-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के सभी रैंक के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सेना के जवान हमेशा दृढ़ता से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को बहुत खराब श्रेणी में रखा है। बोर्ड ने आज दोपहर बाद 1 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 दर्ज किया। 0 से 50 के बीच का 1 UI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब माना जाता है। 401 से 450 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर माना जाता है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी पहली भारत यात्रा है। स्पेन के किसी राष्ट्रपति का 18 साल बाद भारत दौरा हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक एनिमेशन और गेमिंग उद्योगों में भारत की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। उन्होंने रचनात्मक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने में युवाओं की भूमिका की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का उद्घाटन किया और भारत की आकांक्षा सालुंखे ने फ्रांस में कुजिक्स अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वाश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।